बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। 1175 ईस्वी में मुहम्मद गोरी के प्रथम आक्रमण से लेकर 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना तक विभिन्न मुसलमान शासकों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य किया। उनमें से प्रत्येक का प्रयत्न अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना था। इस साम्राज्य विस्तार की लालसा की पूर्ति के लिए उन्होंने न केवल भारत के हिंदू शासकों से ही युद्ध किए, बल्कि आपस में भी युद्ध किए। तुर्क और अफगानों के विभिन्न राज्यवंश भारत की सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और मुगल ब्रैकेट में ममलुक, खलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी आदि राजवंशों में निरंतर परिवर्तन होते रहे, परंतु उनमें से ना कोई भी भारत की राजनीति को व्यवस्थित कर सका और न ही संपूर्ण भारत को जीतने में सफल हो सका। निसंदेह मुसलमान शासकों ने न केवल उत्तर भारत में ही अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, बल्कि दक्षिण भारत में भी उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने में सफल हुए। परंतु वे न तो हिंदू शासकों को समाप्त करने में सफल हुए और न ही भारत को एकता और व्यवस्थित शासन प्रदान कर सके। उनके समय में एक बात अवश्य निश्चित हुई कि मुसलमान भारत में बस गए, इससे हिंदू और मुसलमानों के साथ रहना सीखा, दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित करना आरंभ किया, धार्मिक प्रारंभिक कटुता नष्ट होने लगी, परंतु भारत की राजनीति में कोई परिवर्तन न आया। इस कारण जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत की राजनीतिक अवस्था मुसलमानी आक्रमणों के आरंभ के समय की भांति ही दुर्बल और अस्थिर थी। इब्राहिम लोदी के समय से दिल्ली सुल्तान का वैभव नष्ट प्राय था और उसका साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था। बिहार प्रायः स्वतंत्र हो गया था और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी एक स्वतंत्र शासक के समान व्यवहार कर रहा था। उत्तर भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर और खानदेश तथा दक्षिण भारत में बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर स्वतंत्र मुसलमानी राज्य थे, परंतु इनमें से किसी की भी स्थिति दृढ़ और व्यवस्थित न थी। पारस्परिक संघर्ष, आंतरिक विद्रोह, राजवंशों में परिवर्तन और राज्य की सीमाओं एवं राजनीति में परिवर्तन इनके लिए सामान्य बात थी। निसंदेह राणा संग्राम की सिंह के नेतृत्व में राजपूतों की शक्ति राजस्थान में श्रेष्ठ थी। वह दिल्ली, गुजरात और मालवा के शासकों के लिए भय का कारण बना हुआ था। दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर का संगठित शक्तिशाली राज्य था तथा उड़ीसा में भी हिंदू राज्य स्थापित था, परंतु अपने अपने क्षेत्र में शक्तिशाली होते हुए भी ये हिंदू राज्य भारत को राजनीतिक एकता और स्थिरता प्रदान करने में असफल थे। आर्थिक दृष्टि से भारत बाबर के आक्रमण के समय भी धनवान था। कृषि, व्यापार और उद्योगों की दृष्टि से भारत संपन्न था। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में समन्वय का समय आरंभ हो चुका था। हिंदू और मुसलमान सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से एक दूसरे को समझने का प्रयत्न आरंभ कर चुके थे और एक दूसरे के सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक विचारों को प्रभावित कर रहे थे। अनेक संत और धर्म प्रचारकों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया था, जिसने मुगलों के समय की धार्मिक सहनशीलता की भावना की आधारशिला का निर्माण किया। अन्य प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त उर्दू भाषा का आरंभ भी इस समय में हो चुका था। सूफी मत भी भारत में बढ़ रहा था और यह माना जाता है कि उस समय हिंदू धर्म का प्रभाव प्रलक्षित होने लगा था। मुगल वंश 1526 ईस्वी में भारत में बाबर ने जिस राजवंश की स्थापना की, वह तुर्की नस्ल का चंगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, परंतु आम तौर पर उसे मुगल पुकारा गया है। मुगल वंश भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। इस वंश ने भारत में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, भारत के अधिकांश भूक्षेत्र को राजनीतिक एकता प्रदान की और इसे एक श्रेष्ठ शासन प्रदान किया। इस वंश में बाबर से लेके औरंगजेब तक एक से एक योग्य और प्रतिभाशाली शासक हुए, जिन्होंने शासक के यश और सम्मान में वृद्धि की। मुगल बादशाहों ने खलीफा के आधिपत्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया, वे सभी अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र बादशाह मानते थे। मुगलों ने भारतीय युद्ध प्रणाली में परिवर्तन किए तथा पहली बार तोपखाने और घुड़सवार सेना में के संतुलित प्रयोग की उपयोगिता को सिद्ध किया। मुगल वंश की स्थापना के समय से भारत में धार्मिक उदारता की नीति आरंभ हुई। मुगल बादशाह मुख्यतः राजनीतिज्ञ और साम्राज्य निर्माता थे, धर्म प्रचार उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। यद्यपि धर्म उनकी राजनीति का साधन अवश्य बन गया था, निश्चय ही जिस उद्देश्य को लेकर मुगल साम्राज्य के निर्माता बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, वह उद्देश्य महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी के उद्देश्य से भिन्न था। संभवतः 300 वर्ष से अधिक समय के पारस्परिक सहवास ने भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट कर दिया था। भारत में धर्म युद्ध, जिहाद और धर्मांधता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। निसंदेह मुगल वंश के समय से धार्मिक सहिष्णुता का युग आरंभ हो गया था। मुगल वंश के समय में भारत ने पुनः विदेशों से संपर्क स्थापित किया। भारत ने विदेशों और मुख्यतः उत्तर पश्चिम के दूरस्थ देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। भारत के व्यापार उद्योग और संपत्ति में भी वृद्धि हुई। इसका प्रभाव कला और साहित्य पर पड़ा। मुगल काल में वास्तुकला, चित्रकला, नृत्यकला, संगीत कला आदि सभी कलाओं और फारसी, उर्दू, हिंदी आदि विभिन्न भाषाओं के साहित्य की प्रगति हुई। इन सभी कारणों से मुगल वंश वैभवपूर्ण रहा और उसने भारत के वैभव को बढ़ाने में सहायता दी। इस कारण भारत में मुगल वंश और उसके साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। बाबर का प्रारंभिक जीवन। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। वह मुगल वंश का प्रथम बादशाह था, जिसने न केवल दिल्ली को अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाई, बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थान भी बनाया। उसके पश्चात के मुगल बादशाह यह कभी न भूल सके थे कि उनकी शक्ति का स्रोत और राज्य का केंद्र दिल्ली था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का पांचवा वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार मध्य एशिया के ही नहीं बल्कि संसार के प्रसिद्ध दो महान विजेताओं का रक्त उसके शरीर में बहता था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो अपने छोटे राज्य से संतुष्ट न था और जिसने अपने रिश्तेदारों से संबंध खराब कर लिए थे। 1494 ईस्वी में जबकि उसके साले अहमद खां और महमूद खां ने उसके राज्य पर आक्रमण किया हुआ था, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। उसी वर्ष 1494 ईस्वी में अपने पिता के मृत्यु के पश्चात बाबर 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। जिस समय से वह गद्दी पर बैठा उसी समय से उसकी कठिनाइयां आरंभ हो गईं। उसके राज्य पर दो शत्रुओं ने आक्रमण कर रखा था, परंतु अपनी कूटनीति और दृढ़ता से उसने उन्हें वापस जाने के लिए विवश किया और वह अपनी गद्दी पर सुरक्षित रह सका। अगले 10 वर्ष बाबर के लिए अत्यधिक कठिनाई के थे। संबंधियों का विद्रोह, आंतरिक षड्यंत्र ही उनकी कठिनाई के कारण न थे, बल्कि उसकी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं भी उसका कारण थी। बाबर प्रारंभ से ही अपने पूर्वज तिमूर की विजयों से प्रभावित था और उसकी राजधानी समरकंद को प्राप्त करने के लिए लालायित था। समरकंद को जीतने का उसका पहला प्रयत्न 1494 ईस्वी में असफल हुआ। 1497 ईस्वी में उसने उसे पहली बार जीता, परंतु वह उसे केवल 100 दिन ही अपने अधिकार में रख सका। 1501 ईस्वी में एक बार फिर उसने समरकंद को जीता, परंतु इस बार भी उसे 8 महीने के पश्चात उसको छोड़ना पड़ा। इस प्रकार दो बार जीत कर भी बाबर समरकंद को अपने अधिकार में न रख सका। उसका मुख्य कारण अपने नेता सैबानी खां के नेतृत्व में उठती हुई उज्बेग जात की शक्ति थी। सैबानी खां के नेतृत्व में उज्बेगों ने प्रायः संपूर्ण मध्य एशिया को अपने अधिकार में कर लिया। इस कारण बाबर मध्य एशिया की राजनीति में सफलता न पा सका, बल्कि यह समय ऐसा था जबकि बाबर ने दो बार फरगना को खोया, अपनी राजधानी अंदिजान को खोया और अनेक अवसरों पर इधर उधर खोहों और घाटियों में अपने कुछ साथियों के साथ अकेला ही भटकता रहा। उसने स्वयं लिखा था, मैंने रमजान का त्यौहार दो बार एक ही स्थान पर नहीं मनाया। 1501 ईस्वी में सैबानी खां से पराजित होकर जब बाबर इधर उधर भटक रहा था, तभी अफगानिस्तान की अस्थिर और दुर्बल राजनीति ने उसे वहां हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। उसी वर्ष काबुल के शासक और बाबर के चाचा उलुग बेग मिर्जा की मृत्यु हो गई। उसके छोटे बेटे अब्दुल रज्जाक को एक सरदार मुकीम आर्गो ने सिंहासन से हटा दिया, उसकी बहन से विवाह कर लिया और पुराने सरदारों को उनके पदों से हटाकर अपने पक्ष के सरदारों को शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न किया। उसका विरोध हुआ और अफगानिस्तान में अव्यवस्था फैल गई। बाबर ने इसका लाभ उठाया और 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया। बिना किसी महत्वपूर्ण विरोध के काबुल और गजनी पर बाबर का अधिकार हो गया तथा बाबर के अधिकार में एक बड़ा राज्य आ गया। काबुल में अपनी शक्ति को संचित किया और सेना की संख्या में वृद्धि की। 1507 ईस्वी में उसने पादशाह की उपाधि ग्रहण की। पादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। काबुल का शासक होने के पश्चात भी बाबर समरकंद को जीतने को लालसा नहीं समाप्त कर सका। 1510 ईस्वी में मर्व के युद्ध में ईरान के शाह इस्माइल से लड़ते हुए अपने मुख्य शत्रु सैबानी खां उज्बेक की पराजय और मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त हुआ। बाबर ने एक बार फिर समरकंद को जीतने का निर्णय किया। उसने शाह इस्माइल से संधि कर ली और उससे सहायता प्राप्त की। 1511 ईस्वी में उसने एक बार फिर समरकंद पर ही नहीं बल्कि बुखारा और खुरासान पर भी अधिकार कर लिया। बाबर के अधिकार में ताशकंद से लेकर काबुल तक एक संपूर्ण मध्य एशिया का विस्तृत साम्राज्य आ गया, परंतु बाबर अधिक समय तक उस ऐश्वर्य का उपभोग न कर सका। शाह इस्माइल से उसके संबंध इसलिए खराब हो गए कि वह शिया मत का समर्थन बहुत अधिक न कर सकता था और समरकंद की सुन्नी प्रजा उसके लिए प्रसन्न हो गई। उसका विचार बन गया कि बाबर कट्टर शियाओं की हाथ की कठपुतली बन गया था और अपने वंश तथा अपनी प्रजा के सम्मान और धर्म की रक्षा करने में असमर्थ था। उज्बेगों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। अपने नवीन नेता उबैदुल्लाह खां के नेतृत्व में उज्बेगों ने समरकंद पर आक्रमण किया। बाबर ने शहर से बाहर निकलकर कुले मलिक नामक स्थान पर उनका मुकाबला किया। उसकी पराजय हुई और उसे समरकंद छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 1512 ईस्वी में समरकंद पुनः बाबर के हाथ से निकल गया। यही नहीं, इसके पश्चात बद अक्सा को छोड़कर संपूर्ण मध्य एशिया का साम्राज्य बाबर के हाथ से निकल गया। 1513 ईस्वी में बाबर काबुल वापस आ गया। तीसरा, बाबर की भारत विजय। कोष्टक में अ लोदी सुल्तान से संघर्ष। एक, आक्रमण अथवा पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण बाबर आरंभ से ही महत्वाकांक्षी था। एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की लालसा उसे प्रारंभ से ही थी। उसने इसी आशय से समरकंद और मध्य एशिया को जीतने की निरंतर प्रयत्न में था। भारत विजय उसकी इसी महत्वाकांक्षा का परिणाम थी। 1503 ईस्वी में उसने एक बुढ़िया से तिमूर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण की कहानी सुनी थी। उससे भी उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। परंतु सभ्यता भारत बाबर का आक्रमण की योजना न बनाता यदि उसे मध्य एशिया की राजनीति में सफलता मिल जाती। उत्तर पश्चिम की ओर किस असफलता ने उसे विश्वास दिला दिया कि यदि उसे साम्राज्य स्थापित करना है तो दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की ओर बढ़ना होगा। उत्तर पश्चिम की राजनीति भी उसके लिए इस प्रयत्न के अनुकूल थी। इसमें संदेह नहीं था कि बाबर उत्तर पश्चिम की ओर अपने राज्य के विस्तार की आशा न कर सकता था, परंतु इस अवसर पर उसे उत्तर पश्चिम से आक्रमण की संभावना नहीं थी। उज्बेक अभी मध्य एशिया में अपनी शक्ति को संचित करने के लिए प्रयत्नशील थे और ईरान तुर्की के सुल्तान सलीम से 1514 ईस्वी में बुरी तरह पराजित हुआ था। इसी कारण पश्चिम एशिया में एक ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित हो गया था जिसके कारण ईरानी या उज्बेक काबुल पर आक्रमण करने की स्थिति में न थी। इसीलिए बाबर भारत विजय की योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए स्वतंत्र था। बाबर का चरित्र और क्षमता उसे भारत पर आक्रमण करने में सहायक थे। निरंतर प्रयत्न करते रहना बाबर के जीवन का लक्ष्य था। उसने अपनी क्षमता और साधनों में वृद्धि की। अपने विरोधी तुर्क मंगोल उज्बेक ईरानी अफगानों से युद्ध करते हुए उसने युद्ध के विभिन्न तरीके सीख लिए थे। उस्ताद अली और मुस्तफा नाम के तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक बड़ा अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था जो भारत में उसकी सफलता का एक मुख्य कारण बना। इस प्रकार काबुल में रहते हुए बाबर ने उस क्षमता और साधनों को प्राप्त कर लिया था जिनके द्वारा वह अपनी साम्राज्य विस्तार की लालसा की पूर्ति करने में समर्थ था। भारत की संपत्ति बाबर की लालसा को बढ़ावा देने वाली थी। आर्थिक दृष्टि से भारत उस समय भी संपन्न था और बाबर को उसका ज्ञान था। यद्यपि धन की लालसा बाबर को आक्रमण का प्रमुख कारण न थी, परंतु सहायक कारण अवश्य थी, क्योंकि वह उसके साथियों और सैनिकों को प्रेरणा प्रदान करने का साधन थी। भारत की दुर्लभ राजनीति ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा और अवसर प्रदान किया। भारत राजनीतिक दृष्टि से विभक्त था। इस समय उत्तरी भारत में सबसे बड़ी शक्ति अफगानों की थी। दिल्ली और आगरा शासन सत्ता अफगानों के हाथ में थी, परंतु दिल्ली का अफगान बादशाह इब्राहिम लोदी संपूर्ण भारत तो क्या, उत्तर भारत का भी बादशाह न था। बिहार में लोहानी वंश के अफगान सरदार स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे और पंजाब में दौलत खां लोदी एक प्रकार से स्वतंत्र शासक के समान व्यवहार कर रहा था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिल्ली के सिंहासन पर दावा कर रखा था और दौलत खां लोदी के संरक्षण में दिल्ली को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। गुजरात मालवा और बंगाल में भी अफगान शासक थे, परंतु इनमें से प्रत्येक अपने स्वार्थों और राज्य विस्तार की लालसा में लिप्त था। उत्तर भारत में अफगान शक्ति प्रमुख होते हुए भी छोटी छोटी विरोधी शक्तियों में बंटकर दुर्लभ हो चुकी थी। भारत के अफगान शासकों में एकत्र होकर किसी विदेशी शत्रु का मुकाबला करने की क्षमता न थी। लेन पूल ने लिखा है, 16वीं शताब्दी के भारत में भारत राज्यों का समूह मात्र था जो किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा सरलता से जीता जा सकता था। सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में देश के साधारण राजाओं का बोलबाला था और सुल्तान के आदेश का कोई सम्मान नहीं था। सिंध काश्मीर उड़ीसा और खानदेश उत्तर भारत के अन्य स्वतंत्र राज्य थे, परंतु उनमें से कोई भी शक्तिशाली न था। उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य राजस्थान में मेवाड़ का था। मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह राणा संगा ने युद्ध कौशल और कूटनीति से न केवल राजस्थान के समस्त राजपूत राजाओं को ही अपने साथ या अपनी अधीनता में रखकर रखा था, बल्कि वह पड़ोस के गुजरात और मालवा के मुसलमान शासकों की शक्ति को दुर्बल करने के लिए प्रयत्नशील था। यही नहीं बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा दिल्ली और आगरा को भी अपने अधिकार में करने की थी, परंतु वह उस समय तक आंतरिक संघर्षों से मुक्त नहीं हो सका था। दक्षिण भारत में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य था जो राजा कृष्ण देव राय के नेतृत्व में अपनी शक्ति की परचम पर था। दक्षिणी पश्चिम का मुसलमान बहमनी राज्य 5 राज्यों में बंट चुका था। ये राज्य अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर थे। दक्षिण के मुस्लिम राज्य न केवल आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, बल्कि इनकी संघर्ष निरंतर विजयनगर राज्य से भी चलता रहता था। इस प्रकार दक्षिण के राज्य अपने आंतरिक संघर्षों में लगे हुए थे और उत्तर भारत की राजनीति की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं था। इस प्रकार भारत की राजनीति में उस समय एकता और स्थिरता का अभाव था। हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और मुसलमान तथा अफगान और अफगान एक दूसरे के शत्रु हो रहे थे। इनमें से कोई भी ऐसा ना था जो शक्ति या कौशल से बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सका होता। निसंदेह ऐसी स्थिति बाबर के आक्रमण के लिए सुअवसर था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया। सभ्यता बाबर के पंजाब में आ जाने के पश्चात राणा संग्राम सिंह ने भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया। दौलत खां लोदी पंजाब में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को सुरक्षा रखना चाहता था और आलम खां लोदी दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। इस कारण इन्होंने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी। राणा संग्राम सिंह को इस आक्रमण से दिल्ली के अफगानों की शक्ति के समाप्त करने अथवा दुर्लभ होने की आशा थी। बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध होने पर दोनों में से एक समाप्त हो सकता था या दोनों दुर्बल हो सकते थे, और तब राणा संग्राम सिंह को दिल्ली को जीतने में सुविधा हो जाती। उनके आमंत्रणों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन दिया। बाबर ने पहले पंजाब में प्रवेश करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयत्न किया। इसी कारण भारत पर उसने 4 आक्रमण किए और तब 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम पानीपत का प्रथम युद्ध था। पहले के 4 आक्रमण बाबर ने अपने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में सीमा के निकट के 2 स्थानों बाजौर और भेरा को जीता और वापस चला गया। उसके वापस जाते ही ये दोनों स्थान मुगलों के हाथ से निकल गए। उसका दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 ईस्वी में हुआ, परंतु इस बार वह पेशावर से वापस चला गया। वास्तव में बाबर के इन आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य भारत में प्रवेश करना न था, वरन यूसुफ जाही विद्रोहों को दबाना और भारत की सीमा का ज्ञान प्राप्त करना था। बाबर ने तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया। इस बार वाजौर और भेरा के अतिरिक्त उसने पंजाब में प्रवेश करके सियालकोट और सैयदपुर पर भी अधिकार कर लिया। बाबर का चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में, इस बार उसने पंजाब में प्रवेश किया और लाहौर और दीपालपुर को भी जीतकर उसने पंजाब के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। वह दौलत खां लोदी से असंतुष्ट हो गया था। इस कारण उसने उसके लड़के दिलावर खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी को संरक्षण दिया और उन्हीं को पंजाब की देखरेख का उत्तरदायित्व सौंपकर वह वापस चला गया। उसके वापस जाते ही दौलत खां लोदी ने दिलावर खां और आलम खां को मार भगाया तथा पंजाब के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। दूसरा, पांचवा आक्रमण और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर भारत को जीतने के उद्देश्य से काबुल से चला। दौलत खां को शीघ्र ही आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे बंदी बनाकर भेरा नगर भेज दिया गया, परंतु मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। आलम खां भी शीघ्र बाबर की शरण में चला गया। बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। इब्राहिम लोदी उसका मुकाबला करने के लिए पंजाब की ओर बढ़ा। दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सम्मुख पहुंच गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने केवल 12,000 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इतिहासकार रसबुक्र विलियम्स ने उसकी सेना की संख्या को 8,000 बताया है, परंतु संभवतः बाबर की सेना की यह संख्या उस समय होगी जबकि वह भारत पर आक्रमण करने के लिए चला था। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव का यह कहना अधिक तर्क संगत है कि पंजाब को जीतने के बाद बाबर की सेना की संख्या में वृद्धि हो गई थी और युद्ध के अवसर पर उसकी संख्या 25,000 के लगभग होगी। उसी प्रकार इब्राहिम लोदी की सेना में 1,000 हाथी और 1,00,000 सैनिक बताए जाते हैं, परंतु संभवतः उसके सैनिकों की वास्तविक संख्या लगभग 40,000 होगी। दोनों पक्षों की वास्तविक संख्या कुछ भी हो, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बाबर की सेना की संख्या से अधिक थी। एक सप्ताह तक दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी रहीं। इसके बाद छुटपुट युद्ध भी हुए, परंतु वास्तविक युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रातःकाल से हुआ और दोपहर तक उसका निर्णय हो गया। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया और अफगान सेना नष्ट हो गई। तीसरा, बाबर की सफलता के कारण। बाबर का तोपखाना, तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग, उसकी युद्ध नीति मुख्यतः तुलगमा युद्ध नीति जो उसने उज्बेक से ग्रहण की, और उसकी सेनापति की योग्यता उसकी विजय के मुख्य कारण थे। बाबर के पास एक अच्छा तोपखाना और बंदूकें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास उनका सर्वथा अभाव था। बाबर ने अपनी सेना की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की थी और अपने तुलगमा घुड़सवारों का प्रयोग समय पर और ठीक ढंग से किया था, जबकि इब्राहिम लोदी के युद्ध करने का तरीका पुराना था। इब्राहिम लोदी की सेना के हाथी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुए, क्योंकि उन्हें तोपों और गोला बारूद का सामना करने की शिक्षा नहीं थी। उनसे घबराकर उन्होंने स्वयं अपनी ही सेना का नाश किया। बाबर के सैनिक इब्राहिम की सैनिकों की तुलना में अधिक अनुशासित और युद्ध प्रशिक्षित थे। बाबर की सेना और उसके सरदार उचित संगठन, योग्य नेतृत्व और विजय की लालसा के कारण अधिक उत्साहित थे, जबकि इब्राहिम की सेना में एकता उत्साह का अभाव था। यही नहीं, बल्कि उसके अनेक सरदार क्षुब्ध और असंतोष की भावना से त्रस्त थे। इस कारण व्यक्तिगत साहस और शौर्य के होते हुए भी इब्राहिम के सैनिक बाबर के सैनिकों की तुलना में दुर्बल थे। इब्राहिम एक कुशल सेनापति न था। बाबर ने उसके बारे में लिखा, वह एक अनुभवहीन जवान आदमी था जो अपने गतिविधियों के प्रति लापरवाह था, जो बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता था, बिना किसी कारण के रुकता अथवा लौटता था, जो बिना दूरदर्शिता के लड़ जाता था।